Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और नारायण इसका दूसरा एक अर्थ है, उन्होंने अतीत को भी देखा और भविष्य को भी देखा, और उन्होंने सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यामिव जायते पुनः। आपके पास समय कितना है, आपके पास समय कितना है, आपके पास देश कितना है? हाँ, परम पूज्य महाराज श्री बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में आपका सौर मंडल छोटा सा, और इतने बड़े विशाल सौर मंडल में आपकी पृथ्वी बड़ी छोटी सी, और इतनी बड़ी पृथ्वी पर आपका भारतवर्ष छोटा सा, इतने बड़े भारतवर्ष में आपका महाराष्ट्र और छोटा सा, और इतने बड़े महाराष्ट्र में आपकी मुंबई, और उस मुंबई में भी आपका ये प्रेमपुरी आश्रम, और प्रेमपुरी आश्रम में भी आप कितने हैं, आप है कितने, आपका अस्तित्व, देश का अस्तित्व कितना है? आप अनंत की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं अत्ता पत्ता कहीं मालूम पड़ेगा। अब काल को भी देखना, अनंत काल है, और अनंत काल के दृष्टि से हमारा काल कितना है? अरे कुछ भी नहीं, हम पैदा होते 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 मरते जाते हैं। हमारा होना होना नहीं है, हमारा होना तो केवल एक मृत्यु की प्रक्रिया है, हमारा होना एक परिवर्तन है। आप ध्यान देना, हमारा जो होना है ना, हमारा अस्तित्व एक परिवर्तन है, परिवर्तन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिसको तीन काल बोलते हैं, आप जिसको वर्तमान क्या बोलते हैं, आप वर्तमान का मतलब क्या है? आपके सामने दो ही काल हैं, एक अतीत और दूसरा भविष्य। आप जिसको वर्तमान बोलते हैं, वो वर्तमान दो कालों की संधि काल, संधि अवस्था है, और आपका वर्तमान काल इतना छोटा, आप सबसे ज्यादा बड़ा काल कौन सा मानते हैं आप? भविष्य काल, भूतकाल की वर्तमान काल। आप विचार करेंगे ना, लंबा काल है अतीत, कब कितना गुजरा, आगे कितना आएगा, वो बहुत लंबा। आप लेकिन आपका वर्तमान कितना छोटा है, आपका वर्तमान काल कितना छोटा, मैं आपको बता दूं, वर्तमान काल इतना बोलते ही चला जाता है। आप एक काल में एक शब्द भी नहीं बोल, देखो राम बोला, र से अ तक पहुंचे, और र क्या हो गया, भूतकाल। आपने राम म तक पहुंचे तो र क्या हो गया, भूतकाल। आप एक काल में, एक वर्तमान काल में आप राम शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकते हैं, उसको वर्तमान काल बोलते हैं। इतना क्षणिक है वर्तमान काल, इतना क्षणिक, इसलिए कहते हैं लोग वर्तमान काल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब क्षणिकत्व का विवेचन करने लगे दार्शनिक लोग बैठ करके, तो नव्य न्यायिकों ने क्षणिकत्व की परिभाषा दी, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम। बड़ी सुंदर परिभाषा, ये बड़े ध्यान देके सुनने की बात है। उन्होंने कहा भैया सारी दुनिया जो है सर्वम क्षणिकम, ये सारी दुनिया क्षणिक है। तो बोले क्षणिक का मतलब पहले क्षण में उत्पन्न होती हैं, दूसरे क्षण में रहती हैं, और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती। आप जो भी चीजें देखना, पहले क्षण में पैदा हुई, दूसरे क्षण में रही, और तीसरे क्षण में नष्ट हो गई। अब आप इसको थोड़ा व्यवहार में देखिए, तो ये तो हम फिलोसॉफी ऐसा जैसे बहुत ऊंची चीज की तरह देखते हैं, जब तक उसको आप जीवन में उतार के नहीं समझते है ना, तब तक वो दूर की चीज मालूम पड़ती है। मैं आपको एक उदाहरण में बता देता हूं। आपका बेटा है, पैदा हुआ, आपके पास कोई चीजें हैं, आपने एक वस्त्र खरीदा, और वस्त्र खरीद करके आप अपने घर में लाए, तो आप क्या बोलते हैं? आपने लाया है घर में, और सबको दिखाते हैं ये नई साड़ी लाई है। अच्छा, ये वो नई साड़ी है कि दो घंटे पुरानी है? आप साड़ी लाए हो, और साड़ी ला करके कितना घंटे हो गए? दो घंटे हुए हैं। तो आप क्या बोलते हैं? आप नई साड़ी ऐसा बोलते हैं कि दो घंटे पुरानी साड़ी बोलते हैं? लेकिन वो नई है कि दो घंटे पुरानी है? थोड़ा सोचो आप, क्या ये नयापन क्या चीज है? आपकी दृष्टि है, आपका दृष्टिकोण है। आपकी जो साड़ी है वो नई नहीं है, दो घंटे पुरानी है। अब वो जितना समय जाता जाएगा, तीन घंटे पुरानी, चार घंटे पुरानी। पुरानी शब्द का अर्थ केवल फटाफट फटना ही थोड़ी होता है। हाँ, आप दो घंटे हुए साड़ी लाए हैं, लेकिन वो फटी है कि नहीं? आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखो ना, तो दो घंटे में बहुत बदल गई हो। हाँ, यदि वो दो घंटे में नहीं बदले तो चार घंटे में भी नहीं बदले वो। यदि चार घंटे में ना बदले तो दो दिन में ना बदले, दो दिन में ना बदले तो छह महीने में भी ना बदले। ये नियम है, सूत्र है। आप ध्यान देके इसको सुनेंगे, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आप जैसे ही वस्तु जैसे ही पैदा होती है ना, पैदा होते ही उसमें बदलाव शुरू हो जाता है, उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, उसमें विक्रिया प्रक्रिया सब कुछ शुरू हो जाता है। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है ना, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। वो साड़ी पैदा हुई, बाहर आई, उसमें बदलाव तो चल ही रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर चल रही है, बढ़ रही है, एक एक क्षण उसका क्षरण होता जा रहा है। मालूम पड़ता है आपको तब जाके, जब आपको लगता है कि अब ये साड़ी फटने लगी, तब मालूम पड़ता है। चमक क्या, वो पैदा होते ही वो चमक थोड़ी रहती है, उसमें जो बदलाव है आपको मालूम नहीं। एक क्षण का भी बदलाव है वहां दो क्षण का भी बदलाव है। जैसे आदमी पैदा हुआ, और पैदा जैसे ही हुआ तो उसके बाद बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए नवीन न्यायिक कहते हैं वस्तु पैदा होती है पहले क्षण में, क्षण क्षण, घंटा उंटा नहीं है। वो दार्शनिक लोग विचार कर रहे क्षण, क्षण का मतलब बहुत समय का बिल्कुल अंतिम छोटा जो रूप है उसको क्षण बोलते हैं। पहले क्षण में पैदा हुई, दूसरे क्षण में बोले रही, और तीसरे क्षण में नष्ट, फिर बदलाव, फिर क्षण क्षण क्षण, पैदा होना नष्ट होना, पैदा होना रहना नष्ट होना, पैदा होना रहना नष्ट होना, तीन तीन क्षण। और ये जो अस्तित्व है ये बोले बदलाव है और कुछ नहीं है। जिसको हम अस्तित्व कहते हैं ये परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम परिवर्तन को ही अस्तित्व के रूप में देख रहे हैं, ये नव्य न्यायिकों ने बोला। बौद्ध ने कहा भैया तुम थोड़ा ज्यादा स्थूल दृष्टि से देख रहे हो, थोड़ा और सूक्ष्म दर्शी चश्मा लगा लो तो और अच्छी बात दिखाई देगी। बौद्ध दर्शन बहुत ऊंचा दर्शन है। बौद्ध दर्शन में केवल एक ही कमी है कि वे वेद को नहीं मानते हैं। और यदि वेद को यदि बौद्ध दर्शन मान ले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बौद्ध दर्शन है कि वेदांत दर्शन है। इसलिए आपकी जो मांडुक्य कारिका है ना, मांडुक्य कारिका ये आपके हिंदू वेदांत धर्म ग्रंथों में भी उसकी सूची में है। और बौद्ध तिब्बती जो ग्रंथ है ना, आप उसकी लिस्ट देखना, उसके अंदर भी उनका ग्रंथ है। वो मांडुक्य कारिका बौद्ध लोग कहते वो हमारा है, और वेदांत तो अपना है ही। वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ मांडुक्य कारिका है, सर्वोच्च ग्रंथ। वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ आपका मांडुक्य कारिका, और तिब्बती धर्म ग्रंथों में भी मांडुक्य कारिका उनका भी सर्वोच्च ग्रंथ है, बोलते हमारा है। आप कल्पना करो, एक ऐसा ग्रंथ है कि दो ऊंचे से ऊंचे धर्म वाले बोलते हमारा है, तो कितना सामंजस्य होगा, कितनी समानता होगी उसमें। आप बौद्ध दर्शन को आप बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये बात अपनी वेदांत की कह रहे हैं, लेकिन अंतर केवल इतना पड़ता है कि वो वेद का प्रमाण नहीं देते हैं और हम वेद के प्रमाण को देते हैं, क्योंकि उनके सामने वो चीज है। वेद का यदि प्रमाण वो देने लग जाए तो फिर वेद को आंशिक मानेंगे कि पूर्णतः मानेंगे? यदि वेद को प्रामाणिक मान के वेद का प्रमाण यदि वो देने लगे तो आप क्या बोलोगे, भैया वेद में तो और भी बात लिखी हुई है, उसको भी स्वीकार करो। इसलिए बौद्धों ने कहा इस झंझट से अपने को दूर रहना है, अपने को नहीं मानना है बाकी चीज है, इसलिए वेद के सिद्धांत की बात करो, वेद का नाम ही मत लो। भगवान बुद्ध तो क्षत्रिय थे, वो हिंदुओं की तो अवतार माने गए हैं। इसलिए ये अपने सन्यासी महात्मा लोग इसका गंभीरता से अध्ययन नहीं करते हैं, मुझे मालूम है। और ऊपरी पूरी पूर्व पक्ष को पढ़ करके फिर बौद्ध दर्शन का खंडन करने लगते हैं। हम सन्यासी महात्मा बौद्धों के दर्शनों का मूल ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पूर्व पक्ष सामने लेकर क्या बोलोगे तो क्या पूर्व पक्ष तो खंडन करने के लिए जो चीज ली जाती है वो बोली जाती है। मैं आपको एक चीज बताई देता हूं, अब ये सारी चीज मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा कहां। जब मैं धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगा बनारस में तो मैंने देखा सौगत मत सार सिद्धांत संग्रह नाम का एक छोटा सा ग्रंथ, बहुत कोई प्रोफेसर थे हमारे, मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं बौद्ध दर्शन के बारे में जानना चाहता हूं और पूर्व पक्ष के रूप में नहीं, मैं सिद्धांत पक्ष के रूप में जानना चाहता हूं। उन्होंने मुझे ग्रंथ दिया, बड़ा सुंदर ग्रंथ था, फिर मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद फिर अपने खंडन खंड खाद्य चित सुखी और नब्बे न्यायिकों के ग्रंथों में भी बौद्धों के सिद्धांतों का खंडन किया है। फिर मैंने उन ग्रंथों का जब अध्ययन किया तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वो चीज मैंने बड़े बड़े लोगों के सामने रखी, सन्यासियों के सामने भी। एक अक्सर एक बात का आप बौद्धों के एक बात का खंडन करते हैं आप, और वो बौद्ध की बात है शून्यवाद, गिरीश जी को तो ये मालूम होगा, शून्यवाद का खंडन करते हैं ना, सर्वम शून्यम। तो हम बौद्धों को पूछते हैं भैया सर्वम शून्यम, तो ये बोलने वाला शून्य है कि नहीं, ऐसा बोलते कि नहीं, आप शून्य सर्वम शून्यम कैसे बोलते हो, जब सर्वम शून्यम तो बोलने वाला शून्य है कि नहीं है, यदि बोलने वाला शून्य नहीं है तो सर्वम शून्यम आपका बाधित हो गया, और बोलने वाला शून्य है तो फिर बोलेगा कैसे, इसीलिए बोली सर्वम शून्यम, ये तुम्हारा सिद्धांत गलत है, बड़ा सहजता से हम खंडन कर देते हैं और तालियां भी भजवा लेते हैं कि भैया इसका तो कोई ताड़ तोड़ नहीं है और हम सही बोल रहे हैं। लेकिन दिंगनाग को आप पढ़ना, धर्म कीर्ति को पढ़ना, दिंगनाग ने धर्म कीर्ति ने बोला अरे वेदांतियों, ऐसा ही बोला है वहां संस्कृत के श्लोक है, अरे वेदांतियों अरे बोले तुम हमको क्या समझ रहे हो, सर्वम शून्यम, अरे हमारे सर्वम शून्यम कहते हुए हमको सुनो तो सही, हमने सर्वम शून्यम बोला और तुम बिना समझे ही हमारी बात को काटने लगे, बोले सुनो सुनो, बोले हम बोल क्या रहे हैं, बोले क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा दो प्रकार का शून्य है, स्वभाव शून्यम, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, वो कहते हैं स्वरूप शून्य, स्वभाव शून्यम, शून्य दो प्रकार का है और वो दो प्रकार का शून्य ना आपके अजातवाद की तरह है, स्वभाव शून्यम प्रपंच शून्यम, आप ध्यान देना वो क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि दो प्रकार का हमारा शून्य, हम क्या बोलते हैं सर्वम शून्यम, ये सब शून्य है लेकिन हमारे लिए दो प्रकार का शून्य है, एक स्वभाव शून्य और दूसरा प्रपंच शून्य, है ना। अब ये क्या बोल के आ रहे हैं, बहुत गहराई से बोल रहे हैं, स्वभाव शून्यम जगत और प्रपंच शून्यम आत्मा, ध्यान देना वो क्या परिभाषा दे रहे हैं, स्वभाव शून्यम जगत और प्रपंच शून्यम आत्मा, बोले सर्वम शून्यम, ये सब कुछ शून्य है लेकिन अंतर क्या है, स्वभाव शून्यम जगत, हम इस जगत को क्या बोलते हैं, स्वभाव शून्य है, माने अजातवाद, आपका जो मांडुक्य उपनिषद का जो अजातवाद, स्वभाव शून्य, अरे बोले जगत नाम की कोई चीज नहीं, शून्य, और दूसरा शून्य क्या है, अरे बोले प्रपंच शून्य आत्मा, आत्मा क्या है, आत्मा प्रपंच शून्य है, समझ गए ना, वो आत्मा को भी शून्य बोल रहे हैं लेकिन कौन सा शून्य, प्रपंच शून्य, तो आप भी तो बोलते हैं आत्मा में जगत नहीं है, तो जगत भी है, जगत भी है शून्य लेकिन स्वभाव शून्य, और आत्मा भी है शून्य लेकिन प्रपंच शून्य। जब हम आत्मा को प्रपंच शून्य बोलते हैं तो उस समय आत्मा नहीं है ऐसा थोड़ी लगता है, समझ में आया ना, ये दिग्नाग धर्मकीर्ति आदि ये शून्यम का अर्थ कर रहे हैं, बोलते भैया सर्वम शून्यम, आत्मा भी शून्य है और जगत भी शून्य है, हम बोलते अरे आत्मा कैसे शून्य है, शून्य बोलने वाला शून्य कैसे होगा, वो बोलते शून्यम का अर्थ तो समझो, शून्य माने प्रपंच शून्य और जगत क्या है स्वभाव शून्य। एक बार ऐसी बात निकली अपने आश्रम में, तो निश्चला अपने जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पुरी के, तो मैंने उनको निवेदन किया, मैंने कहा महाराज धिंगना धर्म कीर्ति आदि ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा हुआ है और हम उनके शून्यवाद का खंडन करते हैं, इस उनके मूल ग्रंथों को भी पढ़ लेना चाहिए जिससे कि उनको हमको समझने में मदद मिले और थोड़ी दोस्ती भी हो जाए बौद्धों से। तो कम से कम अपने वेदों को भी पढ़ ले, अपने सिद्धांत को भी वो समझने की कोशिश कर। तो उन्होंने मुझे पूछा भैया क्या कहां लिखा है, मैंने दिखा दिया, इतने खुश हो गए और इतने खुश हुए उन्होंने यही बोला। तब तो बोले हम लोग भाई भाई ऐसे बोला हो, अरे बोले ये बात लिखी हुई है प्रामाणिक है, बोले बात सही है ये। तो नारायण बौद्धों के दर्शन को जब आप पढ़ते हैं, वस्तुतः इन बौद्धों को भी नहीं मालूम उनका दर्शन क्या है, सही बताया जाए। ये जो बौद्ध है ना, एक बार मैं BHU में जब पढ़ता था मैं, तो वहां एक तिब्बती विद्यार्थी था, बौद्ध भिक्षु था। मेरे मन में ये जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बौद्ध भिक्षु से बात कर लेता हूं, उसके यहां कुछ है क्या मालूम है। हमारी बड़ी रुचि थी फिलोसफी में मुझे, और बड़ा रिसर्च करता था, अनेक टिकाए रख करके विचार करता था मैं। तो फिर मैंने उसको पूछा भैया तुम आओ बैठने, बैठे बगीचा में, पूछा कि तुम्हारे सिद्धांत क्या है तुम्हारे बौद्धों में, सुनने बात कुछ नहीं मालूम उसको। और उसके बाद फिर मैंने पूछा कि तुम ध्यान उन करते हो क्या, भगवान बुद्ध तो ध्यान और समाधि की बहुत ऊंची साधना थी। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी बात बोली, उन्होंने कहा रहे बोले ध्यान उन क्या है, बोले उससे समय खराब हो जाता है। अरे बोले टाइम वेस्टेज, ऐसे बोला वो लड़का, बड़ा नवयुवक था, तिब्बत से आया हुआ था। तो उसने बोला टाइम वेस्टेज, मैंने कहा क्यों टाइम वेस्टेज, अरे बोले ध्यान में बैठो कुछ होता तो है नहीं, अरे कुछ पढ़ो लिखो दौड़ो धूपो सब कुछ करो तो कुछ मिलेगा। अरे बोले ध्यान में कुछ बिना किए बैठे रहना, और बिना किए बैठे रहते कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता है, बोले कुछ नहीं खा लिए टाइम वेस्टेज है। बोले ध्यान उन कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा तुम्हारे साधु महात्मा अरे वो कुछ नहीं करते हैं, वो कुछ तंत्र मंत्र कुछ कर्मकांड वो करते रहते, बोले ध्यान उन क्या है कुछ नहीं। तो आज नारायण ये बौद्ध सिद्धांत जो है ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, बहुत ऊंचा सिद्धांत। केवल आप इतना हटा दीजिए, वो वेद को नहीं मानते हैं इतना हटा दीजिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध को नमन किया है, भगवान बुद्ध ऐसा शब्द का बुद्धाय भगवती बुद्ध ऐसा कह करके, और अवतार बताया भगवान विष्णु का अवतार इसलिए बताया भगवान बुद्ध को। तो बौद्धों ने कहा न्यायिकों को कि भैया थोड़ा सा और सूक्ष्म हो जाओ, और सूक्ष्म हो जाओ। बोले क्या, अरे बोले कि द्वितीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम, तुम तो बोल रहे हो तीन क्षण, माने एक क्षण तक ये दुनिया रहती है, एक क्षण तुम इसका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, लेकिन आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो बोले दुनिया का एक क्षण भी अस्तित्व नहीं है। बौद्धों ने कहा द्वितीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्वम। अच्छा ये बात प्रवचन की है कि नहीं, ये तो मैं प्रवचन में बोल रहा हूं, सरल है कि नहीं, ये सारी चीजें प्रवचन की हैं, लेकिन हम डरते हैं कि पता नहीं लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। ये सारी चीजें अपनी हैं, अपनी हैं, और इसको प्रवचन में बोलते रहना चाहिए। बौद्धों ने कहा दूसरे ही क्षण वस्तु नष्ट हो जाती है, ये विवेक है, बहुत बड़ा विवेक है ये, और ये विवेक आपको वैराग्य मिल जाएगा, आपको मालूम पड़े कि ये दुनिया यार सचमुच परिवर्तनशील है, ये वैराग्य मिल जाएगा आपको वैराग्य। बौद्ध कहते हैं वस्तु पहले क्षण पैदा होती है दूसरे क्षण नष्ट होती है। तो उन्होंने एक उदाहरण बताया आपको, श्रेयम दीपकलिका, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। आप दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते हैं तो वो दीपक कलिका वो बढ़ती जा, वो एकदम स्पीड से चलती हैं। आपने जो दीप कलिका जलाई थी वो होती हैं क्या वहां ना, वो तो इतने स्पीड से झरझर झरझर झर पैदा होती जा रही हैं, बस नष्ट होती जा रही हैं। तो वो क्या कहते हैं, पैदा होना नष्ट होना, पैदा होना नष्ट होना, पैदा होना, एक प्रक्रिया है, वहां रहना है ही नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है दीपक है, बोले वो स्वयं दीपकलिका, इसलिए क्योंकि एक वस्तु पैदा हुई और उसी जगह पर दूसरे वस्तु को पैदा करके स्वयं नष्ट हो गई, समझ में है ना, उसी जगह पर एक वैसे ही दूसरी वस्तु दिखाई देती है तो आपको ऐसा लगता है कि वही है, समझ में है ना। इसको प्रतिभिज्ञा बोलते हैं, प्रतिभिज्ञा स्वयं। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी आदमी को देखा और आपने कहा अरे वो आ गया, लेकिन आपको बाद में मालूम पड़ा अरे वो तो नहीं उसके जैसा है, हाँ वो तो नहीं है लेकिन उसके जैसा, तो आपको उसके जैसे में उसकी कई बार प्रतीति हो जाती है। बौद्धों ने कहा नदी बहती है, तो नदी बहती है तो बह रही है, आप जिस नदी में स्नान करना चाहोगे उस नदी में कभी स्नान करोगे क्या? अरे वो तो बह गई भाई, आप जिस नदी में स्नान कर रहे हो वो नदी बह गई, समझ में आया ना? अब आप जब यहां सत्संग में आके बैठे थे वही है कि वो बह गए? आपका शरीर आत्म रूप से तो समझना मत, आत्मा तो वही है, वो बहती नहीं। आपका जो शरीर है जिस क्षण आप यहां सत्संग में आके बैठे थे वही शरीर है कि बदल गया? अरे कितना बदल गया भाई, लाखों करोड़ों सेल्स पैदा हुए, मरे मिटे लाखों करोड़, ये वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, आपके शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स एक क्षण में पैदा होते हैं, मरते जाते, दूसरे पैदा होते हैं, पहले मरते जाते हैं। आपका पेट का सिस्टम, दिमाग का सिस्टम, श्वास, कितना बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। बौद्धों ने कहा कि ये दुनिया सारी परिवर्तनशील, और इसी बात को देखो आपके भगवत गीता में, ऊर्ध्व मूल मदशाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अश्वत्थम प्राहु, भगवान ने क्या बोला? अश्वत्थ, इस संसार रूपी वृक्ष को क्या बोलते हैं? अरे अश्वत्थ बोलते हैं, और अश्वत्थ का मतलब क्या होता है? पीपल। ये आपका पंद्रहवा अध्याय है, पंद्रहवा अध्याय ये बड़ा ऊंचा अध्याय है। ये पीपल की उपमा क्यों दी? वृक्ष पत्ते ये क्या क्या, वो बड़ी गहरी चीजें हैं, और इसको गहराई से अपने को सोचना होता है कि क्यों बोला वृक्ष, क्यों बोला, इनके पत्ते क्या, ये अब यहां बोला अश्वत्थम प्राहु, इसके दोनों अर्थ हैं। अश्वत्थम माने ये पीपल का पेड़ है, और अश्वत्थ शब्द का अर्थ देखना, अश्वत्थ ये तीन है ना, इसमें तीन अक्षर है, आ प्लस श्व प्लस था बराबर अश्वत्थ। अब इसके अर्थ देखो, श्व था माने होता है रहना, रहना, स्था गति निवृत्तो धातु से ये स्थ बनता है, स्थ अस्थ श्व था, श्व माने कल, श्व माने होता है कल, और थ का मतलब होता है रहना, माने श्व माने श्व काले पर्यंतम तिष्ठति इति श्वत्थः, समझ में? जो कल तक जो रहने वाली चीज है ना उसको क्या बोलते हैं? श्वत्थ, श्वत्थ। और आप नहीं समास कर दो, नकार लगा दो पहले तो न का बचेगा आ, तो क्या बनेगा? अश्वत्थ। और अश्वत्थ का अर्थ क्या है? जो कल तक नहीं रहने वाला, श्व माने श्वो काले कल तक, जो न तिष्ठति इति अश्वत्थ, जो कल तक, और कल तक का मतलब वो कल मत समझना, दूसरे क्षण तक, ऐसा जो दूसरे क्षण तक भी जिसका अस्तित्व संभव नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अश्वत्थ। ये हो गया कि नहीं? मया द्वितीय क्षणव्रति ध्वंस प्रतियोगित्वम, दूसरे क्षण में वस्तु नष्ट हो जाए, इतनी बदलने वाली। और यही परिवर्तन आज बालक नचिकेता आपके सामने रख रहे हैं, सस्यमिवा मर्त्यः पच्यते और सस्यमिवा जायते पुनः। कहते कि सस्य का मतलब होता है धान, धान। इन्होंने थोड़ा सा वैराग्य की अवस्था में ना आदमी ऐसे बोलता है, जब आदमी को वैराग्य हो जाए ना, वैराग्य तो वैराग्य में आदमी लालित्यपूर्ण नहीं बोलता, थोड़े कड़े शब्द होते हैं उसके, बोलने के शब्द कड़े होते हैं। इसलिए आचा नचिकेता ने यम को थोड़ा दड़पा दिया, क्या उन्होंने कहा ना, तवै वाहा तव नृत्य गीते, थोड़ा सा झकझोर दिया उन्होंने, कहा यार तुम्हारे ये नृत्य गीत और ये स्वर्ग ये सब तुम अपने पास, ऐसा बोला कि नहीं? ये बड़े आदमी से बोलने की चीज है क्या? तवै वाहा तव नृत्य, अरे तुम्हारी चीजें तुम्हारे पास रहने दो, ये किसने बोला है? नचिकेता ने। और किसके लिए? अरे भाई आचार्य यम, यमलोक के अधिष्ठाता, उसको बोला। तो क्या बड़े आदमी के सामने बोलने की चीज थी क्या ये? नहीं नहीं नहीं, बड़े आदमी के सामने भाई इतना कठोर वचन, अरे प्रार्थना करते भैया हमको नहीं चाहिए, हमको ये चीज चाहिए। लेकिन कठोरता से उन्होंने बोला तुम अपने पास रहो। माने वैराग्य की अवस्था में आदमी बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है। हाँ, आप अपने सिद्धांत से कहीं समझौता नहीं करते। मैं नहीं, नहीं तो नहीं। आज बालक नचिकेता भी वैराग्य की अवस्था में है। मर्त्यः पच्यते, ये मर्त्य जीव के लिए बोला है, दुनिया के पदार्थों के लिए बोला है। कैसे? अरे धान की तरह, धान की तरह आदमी पैदा होता है, धान की तरह मर जाता है, पसता है, पकता है, पकता है। हाँ, इसका क्या मूल्य? वो कहना ही चाहते हैं, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते, सस्यामिव जायते पुनः। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये धान कीट पतंगों की तरह पैदा होता है, मर जाता है, इसलिए बोले अब इसका कोई मूल्य नहीं। हम सिद्धांत का पालन करेंगे, उसका मूल्य है। हम सत्य के लिए जिएंगे, हम असत्य के लिए नहीं जिएंगे। और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं आपको कल बताएंगे। आज प्रवचन को ही विराम देते हैं, सीधे बैठ जाएंगे, एक माला जप करेंगे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।